ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यारे बाप दादा की आज की मुरली कई प्रश्नों का उत्तर देती है। भारत में कई प्रकार की मालाएं सिमरी जाती है, पूजी जाती है, तो माला पूजी क्यों जाती है और माला सिमरी क्यों जाती है? सिमरनी भी कहते हैं माला को, और कोई माला पूजी जाती है, तो दोनों में क्या अंतर है? केवल सिमरी जाती है और दूसरी पूजी भी जाती है, तो दोनों में क्या अंतर है? वो बाबा ने स्पष्ट किया है। और दूसरा, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं नई दुनिया की, तो ब्रह्मा द्वारा ही क्यों, श्री कृष्ण द्वारा नहीं कराते हैं? ब्रह्मा द्वारा ही क्यों कराते हैं? वो भी आज बाबा ने बहुत सुंदर शब्दों से स्पष्ट किया है, वो हम सुनेंगे बाबा के महावाक्यों में। तो बहुत ही गहरी मुरली है, ज्ञान युक्त मुरली है, हम ध्यान से सुनेंगे और फिर नशा भी चढ़ाएंगे, क्योंकि वो माला किसकी है? हमारी ही है। हमने ही भक्ति मार्ग में अपने ही जैसे माला सिमरी या पूजी, तो आज बाबा ने उस माला का बहुत सुंदर वर्णन किया है, सुनेंगे। आज 7 मार्च 2026 है। मीठे बच्चे, तुम इस समय बाप के साथ सेवा में मददगार बने हो। कितने बच्चे बाबा के साथ सेवा में मददगार बने हैं, इसलिए तुम्हारा सिमरण होता है भक्ति मार्ग में। तुम्हारा सिमरण होता है, पूजन नहीं होता। क्यों पूजन नहीं होता, केवल सिमरण होता है? सिमरनी कहते हैं रुद्र माला, वो सिमरनी कहते हैं, पर वैजयंती माला पूजा के लिए माला होती है, वो पूजी भी जाती है। तो सिमरनी और पूज्य माला में क्या अंतर है? तुम्हारी केवल महिमा होती है। तो बाबा कहते हैं, तुम इस समय बाप के साथ सेवा में मददगार बने हो, इसलिए तुम्हारा सिमरण होता है। माला फिरते न राम 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 कहते रहते हैं, फूल का जरूर, फूल को जरूर आंखों पर रखते हैं, और माला तो सिमरते रहते हैं, राम राम कहते हैं, इसलिए तुम्हारा सिमरण होता है, पूजन नहीं, क्योंकि शरीर अपवित्र है। सबसे बड़ा कारण है शरीर अपवित्र है, तो हमारी इस समय पूजा नहीं हो सकती। प्रश्न है, कौन सा नशा तुम बच्चों की बुद्धि में निरंतर रहना चाहिए? निरंतर रहना चाहिए, कभी कभी नहीं। कौन सा ऐसा नशा है जो निरंतर रहना चाहिए? उत्तर, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, ये तो सभी को नशा है ना, हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं। उनसे हम राजयोग सीख स्वर्ग की राजाई का वर्षा लेते हैं। केवल हम शिव बाबा के बच्चे, उतना ही नशा नहीं, लेकिन इस नशे को और बढ़ाना है। कैसे, क्या सोचकर? कि उनसे राजयोग सीख स्वर्ग की राजाई का वर्षा लेते हैं। ये नशा तुम्हें निरंतर रहना चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो बहुत खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना है। विश्व का मालिक बन रहे हैं, राजा स्वर्ग की राजाई का वर्षा ले रहे हैं, तो बहुत खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना है। खबरदारी में क्या विशेष ध्यान देना है? कभी भी बाप की निंदा नहीं करानी है। कोई ऐसा उल्टा कर्म नहीं हो जिससे बाबा की निंदा हो। हाँ, कही के अरे ये अपने आप को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाता, देखो गुस्सा कितना है, इतना गुस्सा है, ये क्या ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाता है, तो बाबा की निंदा होती है ना। तो बाबा कहते हैं कभी भी बाप की निंदा नहीं करानी है, किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं है। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो तो अच्छी रीति धारणा करनी है। गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। तो हम सब पिया के साथ है ना, शिव बाबा पिया है हमारा, पिता है। तो जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है, ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बच्चों ने समझा, गीत समझा, जो बाप के साथ है वह बाप दादा के साथ है, उनके लिए ज्ञान की बरसात है। अभी बाप दादा क्यों कहा बाबा ने? अभी तो डबल है ना, केवल शिव बाबा नहीं है, ब्रह्मा बाबा भी हमारे साथ है, तो अभी तो डबल है ना, तो बाप दादा के साथ है। ये अच्छी तरह समझाया जाता है ब्रह्मा द्वारा। परम पिता परमात्मा शिव स्थापना कैसे करेंगे? क्या विधि है जो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं? वो तो जानते नहीं, मनुष्य तो जानते नहीं, तुम बच्चे ही जानते हो कि उनको अपना शरीर तो है नहीं। श्री कृष्ण को तो अपना शरीर है, ऐसे तो कहा नहीं जाता है कि परमात्मा श्री कृष्ण के शरीर द्वारा स्थापना कराते हैं, ऐसे तो नहीं कहा जाता है। नहीं, कृष्ण तो है सतयुग का प्रिंस, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, तो जरूर ब्रह्मा में प्रवेश करना पड़े। जैसे भी नहीं श्री कृष्ण में प्रवेश करके स्थापना करेंगे, श्री कृष्ण द्वारा स्थापना तो गायन ही नहीं है, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना का गायन है। तो ऐसे तो नहीं कि श्री कृष्ण के शरीर द्वारा करेंगे, नहीं, कृष्ण तो है सतयुग का प्रिंस, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, तो जरूर ब्रह्मा में प्रवेश करना पड़े। और उपाय तो कोई है नहीं, दूसरा कौन सा उपाय है? स्थापना उनको करनी है नई दुनिया की, तो एक ही उपाय है कि ब्रह्मा में प्रवेश करके उनके द्वारा स्थापना कराते हैं। प्रेरणा आदि की तो बात ही नहीं है, बाप ब्रह्मा द्वारा सब समझा देते हैं। विजय माला, जिसको रुंड माला कहा जाता है, जो मनुष्य पूजते हैं सिमरते हैं। तुम बच्चे समझते हो कि रुद्र माला तो सिर्फ सिमरी जाती है, पर रुंड माला पूजी जाती है, वो वैजयंती माला है, देवताओं की माला, और रुद्र माला हम बच्चों की माला है। तो तुम बच्चे समझते हो कि रुद्र माला तो सिर्फ सिमरी जाती है। मेरु कहा जाता है डबल बीड, जो फूल के नीचे है मेरु, उस मेरु को कहा जाता है, मेरु को ब्रह्मा सरस्वती को कहा जाता है, बाकी माला हुई बच्चों की। विष्णु की माला तो एक है जो पूजी जा सकती है, रुंड माला वो पूजी जाती है, उसमें आंख नाक मुख वो सब होता है उस माला में, वो पूजी जा सकती है। इस समय तुम पुरुषार्थी हो, तुम्हारा सिमरण होता है अंत में। अभी तो पुरुषार्थी है ना, तो अभी तो सिमरण नहीं, सिमरण भी नहीं है, सब तो नहीं महिमा करते हैं। अंत में बाबा कहते हैं तुम्हारा बहुत सिमरण होता है अंत में। आत्माओं की माला है या जीव आत्माओं की माला है? रुद्र माला किसकी माला है? आत्माओं की माला है या जीव आत्माओं की माला है? प्रश्न उठेगा ना। तो विष्णु की माला को तो कहेंगे चैतन्य जीवात्माओं की माला, वैजयंती माला, रुंड माला, उनको कहेंगे चैतन्य जीवात्माओं की माला। लक्ष्मी नारायण पूजे जाते हैं ना, क्योंकि उनों की माला, उनों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। रुद्र माला वो तो सिर्फ आत्माओं की माला है, परमधाम में हम सब आत्माएं रुद्र माला के रूप में शिव बाबा के गले में पिरोए जाएंगे, तो वो तो गायन योग्य माला है, उसमें भी रुद्र माला तो वह सारी दुनिया है, लेकिन हम बच्चे रुद्र माला के गायन योग्य बच्चे हैं, जो भगवान के साथ सेवा करते हैं इस सृष्टि को बदलने की। तो बाबा कहते हैं रुद्र माला वो तो सिर्फ आत्माओं की है, क्योंकि शरीर तो अपवित्र है, वो तो पूजे नहीं जा सकते। आत्मा कैसे पूजी जाती है? आत्मा कैसे पूजी जाती है? तुम कहते हो रुद्र माला पूजी जाती है, परंतु नहीं, रुद्र माला की पूजा नहीं होती है, रुंड माला की पूजा होती है। तो रुद्र माला पूजी नहीं जाती है, जब नाम ही है सिमरनी, सिमरते हैं वो लेकर के सिमरते हैं, सिमरनी जो भी दानी है वो तुम बच्चों के सिमरण होते हैं। कौन है वो सिमरनी के दाने? हम बच्चे। तो तुम बच्चों के सिमरण होते हैं। जब तुम शरीर में हो, दोनों तो दाने तो ब्राह्मणों के हैं, रुद्र माला के दाने ब्राह्मणों के हैं। सिमरण किसको करते हैं ये तो किसी को ही भी पता नहीं है। ये वो ब्राह्मण है कौन? जो भारत की सेवा करते हैं, उनको याद करते हैं, भारत खास दुनिया आम, जो बाबा के बच्चे बनते हैं वो सब सिमरने के लायक हैं, उनको सब याद करते हैं। जगत अम्बा, देवियां आदि बहुत है, उनको याद करना चाहिए। हाँ, याद करते हैं तो बाबा पूछते हैं याद करना चाहिए? पूजन योग्य तो सिर्फ लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तुम तो नहीं बनते हो, इसलिए तुम पूजा के योग्य तो नहीं हो, तुम तो केवल गायन के योग्य हो। पूजने लायक तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तुम नहीं, क्योंकि तुम्हारे शरीर पतित हैं। मुख्य कारण क्यों रुद्र माला की पूजा नहीं होती, सिमरण ही होती है, क्योंकि शरीर तो पतित है। आत्मा भल पवित्र है, परंतु वो पूजी नहीं जा सकती, सिमरी जा सकती है। कोई भी तुमसे पूछे तो तुम तो समझा हुआ होना चाहिए बच्चों को। तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणियां, तुम्हारे यादगार देवियों के रूप में है, तुम श्रीमत पर खुद पावन बनते हो, तो ये माला फर्स्ट ब्राह्मणों की समझी जाए, फिर देवताओं की। तो विचार सागर मंथन करने से रिजल्ट निकलेगी, कैसे ये माला सिमरी जाती है, ब्राह्मणों की माला है, जो जिन्होंने भगवान के साथ सेवा की है। जब आत्माएं शालिग्राम रूप में है तब पूजी जाती है, इस समय शरीर के साथ पूजी नहीं जा सकती है, पर हाँ शालिग्रामों की पूजा शिव के साथ होती है। शिव की पूजा होती है तो शालिग्राम की भी होती है, देवताओं के मंदिरों में देवताओं की तो मूर्तियां है ही है, लेकिन साथ साथ शालिग्राम भी वहां रखे होते हैं, वो भी अंडाकार पत्थर होते हैं शालिग्राम। तो वो भी पूजे जाते हैं। शिव की पूजा होती है तो शालिग्राम की भी होती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है। अभी हम सब आत्माएं तो पवित्र है, परंतु शरीर नहीं है। सिमरण सिर्फ तुम्हारा किया जाता है। क्यों क्यों तुम्हारा सिमरण किया जाता है? क्योंकि तुम इस समय शरीर के साथ सेवा करते हो, तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती है। फिर जब शरीर छोड़ते हो, ये पुराना शरीर जब तुम छोड़ते हो, तो तुम शिव के साथ पूजे जाते हो। शालिग्राम के रूप में तुम्हारी पूजा होती है शिव के साथ। हाँ, शिव के साथ शालिग्रामों की पूजा का बहुत सुंदर मंदिर है जम्मू में, रघुनाथ मंदिर है। हजारों क्या लाखों शालिग्राम है। हाँ, एक एक कमरे में पत्थर के स्लैब्स बने हुए हैं, और एक एक पत्थर के स्लैब पर छोटे 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 शालिग्राम बनाए गए, और दीवारों में कई देवी देवताओं के चित्र हैं। तो वो शालिग्रामों की पूजा होती है लाखों के अंदाज में। कितने कमरे हैं, हर कमरे में देखा है किसने, किसने देखा है? हाँ, देखा होगा। हर कमरे में वो शालिग्रामों के पत्थर के पर स्लैब्स पर छोटे छोटे बने। तो जब हम वहां गए थे तो हमने कहा इतने लाखों करोड़ों पता नहीं तो कैसे इनकी पूजा होती है। तो कहा नहीं, हम चंदन लेते हैं, चंदन की पेस्ट बनाते और ऐसे ऐसे छिड़कते हैं, और क्या करेंगे। एक एक को कहाँ तक बैठ के तिलक लगाएंगे, एक एक को वो चंदन छिड़कते हैं। तो पूजा कैसे करते हैं, पाइप लेते हैं, और वो पाइप पानी का पाइप होता है, और सब के ऊपर उनकी पूजा हो जाती है। एक एक का अभिषेक कैसे करेंगे, तो पाइप से करते हैं। और इतने देवी देवताओं के चित्र है दीवारों पर, और बीच में शिवलिंग है बहुत बड़ा। तो एक शिव बाबा और बाकी सब शालिग्राम। तो बाबा कहते हैं जब आत्माएं शालिग्राम रूप में है तब पूजी जाती है। शिव की पूजा होती है तो शालिग्रामों की भी होती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है, शरीर नहीं। सिमरण सिर्फ तुम्हारा किया जाता है। शरीर के साथ हो इसलिए तुम्हारा केवल सिमरण किया जाता है। तुम शरीर के साथ सेवा करते हो, तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती है। फिर जब शरीर छोड़ते हो तो तुम भी शिव के साथ पूजे जाते हो। तो विचार किया जाता है ना, क्या विचार किया जाता है? तुम इस समय ब्राह्मण हो, शिव बाबा भी ब्रह्मा में आते हैं तो ब्रह्मा भी साकार में है। तुम मेहनत करते हो तो ये माला जैसे साकारी है, रुद्रमाला जैसे साकारी है। ब्रह्मा सरस्वती और तुम ज्ञान गंगाएं, तुमने भारत को स्वर्ग बनाया है, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। जो पूजा करते हैं उसमें सिर्फ शिव और शालिग्राम होते हैं, वो पूजा के योग्य है। उनमें ब्रह्मा सरस्वती का अथवा तुम बच्चों का नाम नहीं है। यहाँ तो सबका नाम है, तुम्हारा सिमरण करते हैं। कौन कौन ज्ञान गंगाएं थी, हमारी सब दादियां क्या कहेंगे, ज्ञान गंगाएं थी। अब वो तो है ज्ञान सागर, शिव बाबा ज्ञान सागर है और वो ज्ञान गंगाएं। तो ब्रह्मा कौन सी, ब्रह्मा क्या है, ब्रह्मा क्या है? बाबा कहते ये है ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी। आसाम के तरफ जाएंगे, ब्रह्मपुत्रा नदी इतनी बड़ी नदी है बात मत पूछो। और वो सीधा का कैसे जाती है, सीधा कलकत्ते की तरफ, और फिर वो सागर में समा जाती है। वहाँ गंगा भी समा जाती है, ब्रह्मपुत्रा और गंगा ये दोनों समा जाते हैं सागर में, बे ऑफ बंगाल में वहाँ पर। तो उसको कहते हैं गंगा सागर, बहुत वहाँ पर मेला लगता है गंगा सागर में। वहाँ डायमंड हार्बर है, बहुत बड़ा हार्बर है, बहुत शिप्स आते हैं, जहाज आते हैं वहाँ। तो बाबा कहते हैं तो ये है ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी, ब्रह्मा बाबा। अब ये ब्रह्मा क्या है, नदी है, और साथ साथ बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा माता भी है, ब्रह्मा माता भी है, सागर एक है, ब्रह्मा सागर नहीं है, ब्रह्मा नदी है, ब्रह्मपुत्रा सागर है, नदी है, सागर एक है। बाकी गंगाएं तो किस्म किस्म की अनेक प्रकार की होती है, कितनी ज्ञान गंगाएं हैं, सब जो ज्ञान सुनाती है वो सब ज्ञान गंगाएं हैं। नंबर वार जिनमें अच्छा ज्ञान है फिर उनको सरोवर भी कहा जाता है। बाबा कई बार कहते थे भाई है सरोवर, सरोवर तो वहीं बहता वहीं होता है ना, पर नदी तो बहती रहती है, तो बहने तो एक सेंटर से दूसरा सेंटर, दूसरे से तीसरा, आजकल तो भाई भी करते हैं, तो बाबा भाइयों को कहते ये सरोवर है, और बहनों को बाबा कहते थे गंगाएं हैं, नदियां हैं। तो बाबा कहते हैं नंबर वार जिनमें अच्छा ज्ञान है फिर उनको सरोवर भी कहा जाता है, महिमा भी है। फिर मानसरोवर का गायन है, मानसरोवर तो अभी वो चाइना में आ गया, लेकिन पहले तो भारत में ही था ना, तो वहां पर जाते हैं और वहां स्नान करते हैं, धूप टुबकी लगाते हैं, समझते हैं मानसरोवर में स्नान करेंगे तो हम परी बन जाएंगे, हाँ फरिश्ता पंख आ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं तो सरोवर में नहाते हैं, कहते हैं मानसरोवर में स्नान करने से परी ज्यादा बन जाते हैं, परियां बन जाते हैं, तो तुम्हारी माला सिमरी जाती है। सिमरनी कहते हैं ना, सिमरण करो, वो तो सिर्फ राम राम कहते हैं, सिमरते तो राम राम कहते हैं, परंतु तुम जानते हो सिमरण किसका होगा, हाँ किसका सिमरण होगा, जो जास्ती सर्विस करते हैं। सब ब्राह्मणों का सिमरण नहीं होगा, सेवा करते नहीं है तो सिमरण भी कैसे होगा, जो जास्ती सेवा करते हैं। पहले तो बाबा है फूल, फिर है मेरु जो बहुत मेहनत करते हैं, फिर रुद्र माला, सो फिर विष्णु की माला बनती है। तुम्हारी सिर्फ आत्मा पूजी जाती है, तुम अब सिमरण लायक हो, सिमरनी तुम्हारी है, बाकी पूजा नहीं हो सकती है, क्योंकि आत्मा पवित्र पर शरीर तो अपवित्र है, अपवित्र चीज कभी पूजी नहीं जाती, अपवित्र चीज कभी पूजी नहीं जाती। जब रुद्र माला बनने लायक बन जाते हो फिर अंत में तुम शुद्ध बन जाते हो, तो तुमको साक्षात्कार होगा, अब अंत में साक्षात्कार होगा कि पास विद ऑनर कौन कौन होते हैं। सर्विस करने से नामाचार तो बहुत हो जाता है, पर मालूम पड़ता जाएगा अंत में विजय माला में नंबर वार कौन कौन आएगा। ये बातें बड़ी गुह्य है, परीक्षा में भी हम देखते हैं ना, सारा साल तो सब बच्चे पढ़ते हैं, चलो पढ़ते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्स देते हैं, लेकिन अंत में जो बड़ी रिजल्ट है, पूरी रिजल्ट, वो तो पता चलती है अंत में, और सबको पता चलती है। पहले तो हम लोग कॉलेज जाते थे अपना रिजल्ट देखने के लिए, आजकल तो अभी तो इंटरनेट में सब आ गया है, तो हम कॉलेज में जाते थे और एक एक का नंबर, रोल नंबर तो पता होता था, तो उनका भी देखते थे वो कहाँ है, फर्स्ट क्लास में आया, सेकंड क्लास में आया, थर्ड क्लास में आया। विदेशों में तो ग्रेड्स होते ना, ए बी सी, तो भारत में तो फिर वो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास, तो स्कॉलरशिप, तो ये बहुत कुछ होता था, तो सबकी देख लेते थे, जो जो हमारे फ्रेंड सर्कल थे सबकी देखते, वो कौन से क्लास में आया, वो कौन से क्लास में आया, तो हर एक का पता चल जाता था। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, तो विजय माला में नंबर वार कौन कौन आएगा, ये अंत में सबका पता चल जाएगा, सबका नंबर आउट हो जाएगा। ये बातें बड़ी गुह्य है, मनुष्य तो सिर्फ राम राम कहते हैं। अब बाबा दूसरे धर्मों से भेंट करते हैं, क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को याद करते हैं, अब माला किसकी होगी, क्रिश्चियंस भी फादर के हाथ में माला होती है, छोटी माला वो सिमरते हैं। बाबा देखते थे, बाबा साकार में जाते थे ना सवेरे सवेरे, तो यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत थे, तो वो क्रिश्चियन मिशनरीज या स्कूल में फादर्स होते थे और नन्स होती थी, तो नन्स और फादर्स, तो सेंट मेरी स्कूल है यहाँ और सोफिया स्कूल है, तो उस समय सब नन्स होती थी और सेंट मेरी स्कूल में फादर्स होते थे, लंबे लंबे चोगे पहनते थे, क्रिश्चियन मिशनरीज भी वो इंग्लिश पढ़ाते थे, तो वो अब दे तो बाबा देखते थे, मैंने भी बहुत देखे हैं, तो हाथ में माला लेकर के फेरते थे, तो उनसे पूछते थे ये किसकी माला आप फेरते हो, तो कहते क्राइस्ट और उनके जो अपोस्टल्स है वो दिखाते हैं। वहां पर रोम में भी जो वेटिकन सिटी है वहां पर भी बहुत बड़ा बिल्कुल शिवलिंग जैसा है और उसमें किरणें हैं और एक एक किरण में एक एक अपोस्टल एक एक फरिश्ता दिखाया है, आठ फरिश्ते दिखाए, तो ये आठ की माला और ऊपर में फूल होता है, तो देखो हर धर्मों में है, ऐसे नहीं कि नहीं है, तो इसलिए बाबा कहते हैं क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को याद करते हैं तो माला किसकी होगी, अब गॉड तो एक है, गॉड इज वन, वो तो यही कहते हैं गॉड द फादर, तो वो तो एक है, बाकी जो पास बैठे हैं उनके साथ बैठे हैं उनकी माला बनती होगी, कई सेंट्स है उनकी भी माला बनती होगी, इस माला को तुम अभी सिर्फ समझ सकते हो, अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही नहीं समझते तो और कैसे समझेंगे, सबको पतित से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है, क्राइस्ट के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे क्राइस्ट के लिए कि वो पतित से पावन बनाने वाला है, उनकी उनको जन्म मरण में आकर नीचे उतरना है, वास्तव में उनको गुरु भी नहीं कहेंगे क्योंकि सर्व का सदगति दाता तो एक ही बाप है जो सबको वापस ले जाता है, वो धर्म पिता है, आते उसके पीछे उनकी आत्माएं आती है उस धर्म की, तो इसलिए गुरु भी नहीं कहेंगे क्योंकि सर्व का सदगति दाता तो एक ही बाप है, सो तो जब अंत हो झाड़ जर्जरी भूत हो तब बाप आकर सबको सदगति देते हैं, आत्मा ऊपर से आती है धर्म की स्थापना करने, धर्म पिताओं की आत्मा ऊपर से आती है धर्म की स्थापना करने, उनको तो जन्म मरण में आना है, सतगुरु तो एक ही है, वो सर्व के सदगति दाता है, सच्चा सतगुरु मनुष्य कोई हो नहीं सकता, वो तो सिर्फ आते हैं धर्म स्थापन करने, उनके पिछाड़ी सब आने लगते हैं पाठ बजाने, जब सब तमो प्रधान अवस्था को पाते हैं तब मैं आकर सर्व की सदगति करता हूँ, ये केवल भगवान ही कह सकते हैं, मैं आकर अंत में सब की सदगति करता हूँ, सब वापस जाते हैं, फिर नए सिर चक्र शुरू होता है, तुम राजयोग सीखते हो वही राजाई पाएंगे, जो राजयोग सीखेंगे वही राजाई पाएंगे, फिर राजा बने या प्रजा बने, भले सीखते राजयोग है ये प्रजा योग नहीं है, राजाई के लिए योग है, परंतु सब तो राजाई बनेंगे नहीं, कोई तो प्रजा भी बनेंगे, प्रजा तो ढेर बनती है, मेहनत है राजाई पद पाने की, अंत में पूरा पता पड़ेगा कौन विजय माला में पिरोए जाते हैं, अनपढ़ पढ़े के आगे भरी डोएंगे, फिर सतयुग में जो जिन्होंने यहाँ अच्छी पढ़ाई की अच्छी सेवा की सब धारणाएं पूरी की वो तो राजा रानी बनेंगे, पर जिन्होंने नहीं की भले ब्राह्मण कहलाए लेकिन इतनी पढ़ाई नहीं की इतनी धारणा नहीं की तो वो पढ़े लिखे के आगे अनपढ़ वो भरी डोएंगे दास दासी बनेंगे, तो बाबा कहते हैं तो ये सब मालूम पड़ जाएगा, मेहनत है राजाई पद पाने की, अंत में पूरा पता पड़ेगा कौन विजय माला में पिरोए जाते हैं, अनपढ़ पढ़े के आगे भरी ढोएंगे, सतयुग में आएंगे जरूर परंतु नौकर चाकर बनना पड़ेगा, ये सबको मालूम हो जाएगा, अंत में सब आउट हो जाएगा, जैसे इम्तिहान के दिनों में सबको मालूम पड़ जाता है कौन कौन पास होंगे, पढ़ाई पर अटेंशन नहीं होता है तो फेल हो जाते हैं। तो तुम्हारी ये है बेहद की पढ़ाई। ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो एक ही है, जहाँ मनुष्य से देवता बनना है उसमें नंबरवार पास होते हैं। पढ़ाई एक है राजयोग की, पढ़ाई सबकी एक ही है राजयोग की। राजाई पद पाने में मेहनत है और सर्विस भी करनी है। राजा तो बनेंगे परंतु उसके लिए प्रजा भी तो बनानी पड़ेगी ना। सर्विस नहीं करेंगे बस ब्राह्मण कहलाया अपने आप को, परंतु प्रजा नहीं बनाई तो राजा तो नहीं बन सकेंगे ना। तो बाबा कहते राजा जो बनेंगे उनको फिर अपनी प्रजा भी बनानी पड़े। हाँ देखो बाबा कितने सब गुय्यराज समझाते हैं। अच्छी अच्छी बच्चियां बड़े बड़े सेंटर संभालती है, अच्छी अच्छी बच्चियां बड़े बड़े सेंटर संभालती हैं। हमारे विदेश की भाई बहने भी बहुत अच्छी अच्छी से अच्छी अच्छी सेवा केंद्र संभालते हैं। जो डबल विदेशी है और सेंटर संभालती है बहने, सब हाथ उठाओ कौन सेंटर संभालती है। देखो हाँ सब सेंटर संभालती है। और तो आप बाबा कहते हैं हाँ इनके लिए बहुत बहुत। और भाई भाई भी जो सेंटर संभालते हैं, बहुत विदेश के भाई सेंटर संभालते हैं। भाई खड़े हो जाए, स्टैंड अप प्लीज ब्रदर्स, दोज हू रन सेंटर्स। हाँ देखो ये सब सेंटर संभालते हैं भाई। और ये हाँ, और ये भाई सीरिया में रहता है। सीरिया आप देखते वो भी अभी वहां पर भी युद्ध का माहौल है। सीरिया प्लीज स्टैंड अप। ये देखो सीरिया में रहता है, कहता है कैसे बॉम्ब गिरते हैं और ये यहाँ बैठा है। वहां भी बाबा का बहुत सुंदर सेंटर है। हाँ, बहुत अच्छा सेंटर है, ये संभालता है। तो देखो बाबा के बच्चे सारे विश्व में, तभी तो का 140 देशों में बाबा के सेंटर्स हैं। और इस समय तो लगभग सब आ गए हैं, कहा बहुत आ गए। नीचे कितने बैठे हैं बस उत्सुक हो रहे हैं, कब ऊपर जाएंगे कब ऊपर जाएंगे। उनको कहते हैं यहाँ जगह ही नहीं है। मधुबन हाउसफुल, ज्ञान सरोवर हाउसफुल ऐसा हो गया। तो देखो तो कई भारत वाले भी हमको कहते हैं ऊपर आए, हम कहते नहीं बिल्कुल नहीं आना है, ऊपर आना ही नहीं है, ये तो केवल अभी तो विदेशियों की सीजन चल रही है। तो बाबा कहते हैं तो बाबा भी कहते हैं अच्छी बच्चियां बड़े बड़े सेंटर संभालती है, बड़ी प्रजा बनाती है। बाबा भी कहते हैं बड़ा बगीचा बनाओ तो बाबा भी आकर के देखे। बाबा को निमंत्रण देते थे बच्चे, बाबा कहते तुम्हारा बगीचा तो अभी बहुत छोटा है, बड़ा बगीचा होगा तब बाबा आएंगे। तो बाबा आकर देखे, अभी तो बहुत छोटा है, बॉम्बे में तो लाखों हो जाएंगे। लो बाबा ने बॉम्बे को याद किया, मुंबई लाखों हो जाएंगे। अभी तो बहुत सेंटर्स है मुंबई में, हर सबर्बन एरिया में सेंटर है, कितने सेंटर्स है बहुत, और हजारों की तादाद में। हमने तो बोरेवली में देखा शिफ्ट चलती है, सवेरे 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, ऐसे 3 3 4 4 शिफ्ट चलती है। क्योंकि एक साथ भी तो नहीं आते हैं तो इसलिए अलग अलग शिफ्ट में आते हैं, तो ऐसे भी है। तो बॉम्बे में तो लाखों हो जाएंगे, सूर्यवंशी तो सारी डिनास्टी होती है तो ढेर हो जाएंगे। जो मेहनत करते हैं वे राजा बनते हैं, बाकी तो प्रजा बनती जाएगी। गाया भी हुआ है हे प्रभु तेरी सदगति की लीला, हे प्रभु तेरी लीला अपरम अपार है। तो तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, हे ईश्वर तुम गति करने की जो मति है वो तुम ही देते हो, तुम ही जानो, ये ग्रंथ में आता है। तो तुम्हारी गत मत न्यारी। तो बाबा कहते हैं गाया भी हुआ है हे प्रभु तेरी सदगति की लीला न्यारी। तुम कहते हो वहां बाबा आपकी गति मति, हाँ आपकी गत मत न्यारी, सर्व के सदगति करने की जो श्रीमत आप देते हो वो सबसे न्यारी। तुम्हारी गति मत तुम ही जानो, तो तुम जो श्रीमत देते हो गति होने की वो न्यारी, तो वो सबसे न्यारी। तो बाप साथ में ले जाते हैं, हाँ क्या क्या गति करते हैं, साथ में ले जाते हैं, छोड़ नहीं जाते हैं। तो निराकारी आकारी साकारी लोक को भी नहीं जानते हैं, हाँ कुछ नहीं जानते मनुष्य, सिर्फ सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना वो भी कंप्लीट नॉलेज नहीं है। त्रिकालदर्शी तो बनते हैं, तीनों कालों को तो जान लेते हैं, लेकिन त्रिलोकी नाथ भी बनना है, तीनों लोकों को भी जानना है। तो इसलिए बाबा तीनों लोकों का तीनों कालों का ज्ञान देते हैं, वो भी कंप्लीट नॉलेज नहीं है। अगर केवल त्रिकालदर्शी बने और त्रिलोकी नाथ नहीं बने, तीनों लोकों का ज्ञान नहीं है। तो पहले तो है मूल वतन, उसको भी जानना पड़े, जहाँ तुम आत्माएं रहती हो। इस सारे सृष्टि चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। ये सब कितनी समझने की बातें हैं, वो तो कह देते हैं शिव नाम रूप से न्यारा है। अभी और सर्वव्यापी की बात, हाँ सर्वव्यापी की बात तो अब सारी दुनिया में, वेयर इज गॉड एवरीवेयर, हाँ कई ऐसे कहते सब जगह है। अब बाबा कहते हैं, वो तो कह देते हैं, एक तरफ कहते हैं शिव नाम रूप से न्यारा है, अब चित्र भी है, शिवलिंग है, चित्र तो है, फिर भी कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। एक MP ने कहा था, हाँ एक MP आया होगा बाबा के पास, तो या सेंटर पर गया होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उसने कहा था कि ये मैं नहीं मानता कि ईश्वर सर्वव्यापी है। जब उसको समझाया गया कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, तो उसने तुरंत स्वीकार किया, कहा मैं भी नहीं मानता हूँ कि परमात्मा सर्वव्यापी है। क्यों? फिर उसने खुद ही कारण बताया, मनुष्य एक दो को मारते हैं, क्या ये ईश्वर का काम है? एक दो को मारना ये क्या ईश्वर का काम है? आगे चलकर इन बातों को समझेंगे और स्वीकार करेंगे कि बरोबर ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। जब तुम्हारी भी वृद्धि होगी, बाबा ने रात को भी समझाया, जो अपने को होशियार समझते हैं वो ऐसे ऐसे पत्र लिखे, यह पूरी नॉलेज क्या है उनको समझाना चाहिए। लिख सकते हो, हम पूरी नॉलेज दे सकते हैं। अब इतना तो स्वीकार किया उसने सर्वव्यापी नहीं है, पर पूरी नॉलेज भी तो वो समझे। तो मूल वतन की नॉलेज भी दे सकते हैं, निराकार बाप का भी परिचय दे सकते हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा और उनके ब्राह्मण धर्म के बारे में भी समझा सकते हैं, लक्ष्मी नारायण से राम सीता उनों की डायनेस्टी कैसे चलती है, फिर उनसे राजाई कौन छीनते हैं, हाँ कौन छीनते हैं? लक्ष्मी नारायण से राम सीता राजाई छीनते नहीं हैं, वो तो सहज ही परिवर्तन हो जाता है और राम सीता की गद्दी होती है, परंतु द्वापर युग में कौन राजाई छीनता है? देखो तो बाबा कहते हैं उन्हों की राजाई कैसे चलती है, फिर उनसे राजाई कौन छीनते हैं, वो स्वर्ग कहाँ गया? क्योंकि द्वापर में भी राजाई तो थी ना, तो कैसे किसने छीनी? तो और वो स्वर्ग जो लक्ष्मी नारायण राम सीता का तो था, वो कहाँ चला गया? जैसे कहा जाता है नर्क कहाँ गया? अभी तो नर्क है, अब स्वर्ग में तो नर्क का नाम निशान नहीं होगा, तो वो नर्क कहाँ गया? हाँ तो जैसे कहा जाता है नर्क कहाँ गया, तो कहेंगे खत्म हो गया, नर्क कोई पानी में नहीं चला, समुद्र के नीचे नहीं चला गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। स्वर्ग भी खत्म हो जाएगा, जैसे नहीं सोनी द्वार का पानी में चली जाएगी, नहीं बाबा कहते वो भी खत्म हो जाएगा, स्वर्ग भी खत्म हो जाएगा। उस समय भी अर्थ को एक आदि होती है, जैसे देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, हाँ तो अर्थक्वेक होते हैं सारे, बहुत भूकंप होता है, धरती हिलती है, क्योंकि देवताएं अभी विकारों के मार्ग में चले गए, तो इसीलिए पांच तत्व भी सब कैसे हिलते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर वो सब भले पानी में जाता है, लेकिन अभी कोई निकालने की कोशिश करे वो स्वर्ग थोड़ी निकल आएगा। तो बाबा कहते हैं वो खत्म हो गया। जैसे कहा जाता है नर्क कहाँ गया, तो कहेंगे खत्म हो गया, तो स्वर्ग भी खत्म हो जाएगा। उस समय भी अर्थक्वेक आदि होती है, वो हीरे जवाहरात के महल आदि ऐसे चले गए जो कोई निकाल न सके। सोने हीरे जवाहरातों के महल कभी नीचे से निकले नहीं है। बाकी हाँ कुछ ने खुदाई करते हैं तो कई मकान इमारतें निकलती है, परंतु बाबा कहते वो तो सब द्वापर की होगी, सत्युग त्रेता का तो कोई नहीं निकलता है कुछ भी। तो सोने हीरे जवाहरातों के महल कभी नीचे से निकलते नहीं है। सोमनाथ आदि का मंदिर तो बाद में बना है, उनसे तो उनों के घर ऊंचे होंगे। सत्युग त्रेता में जो देवताओं के घर होंगे वो कितने ऊंचे होंगे, जो द्वापर युग में मंदिर इतने ऊंचे बनाए तो उनके महल कितने ऊंचे होंगे, उनसे तो उनों के घर ऊंचे होंगे। लक्ष्मी नारायण का घर कैसा होगा, द्वापर युग में उन्होंने मंदिर ऐसे बनाए तो सत्युग में उनका घर कैसा होगा, लक्ष्मी नारायण का घर कैसा होगा। वो सारी मिल्कियत कहाँ गई, भारत की इतनी मिल्कियत थी, इतनी धन संपत्ति थी, कहाँ गई। ऐसी ऐसी बातें जब विद्वान सुनेंगे तो वंडर खाएंगे। तो इनों की नॉलेज तो जबरदस्त है, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ सर्वव्यापी कह देते हैं, बस सर्वव्यापी कह के पूरा हुआ। ये सब समझने की और समझाने की बातें हैं। तुमको धन मिलता है, ज्ञान धन मिलता है, फिर ये दान करना है। बाबा तुमको देते जाते हैं, तुम भी देते जाओ। बाबा ज्ञान धन देते जाते, तुम भी देते जाओ। ये अखूट खजाना है, सारा मदार है धारणा पर। कितना ये ज्ञान धारण करते हो, जो बांटते हो, सारा मदार धारणा पर है। जितनी धारणा करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो ख्याल करो, अब क्या और ख्याल करो, कहाँ कौड़ी और कहाँ हीरा। अभी मनुष्य की का जीवन कौड़ी मिसल, और कहाँ बाबा हीरे जैसा जीवन बनाते हैं। कहाँ कौड़ी कहाँ हीरा, हीरे का मूल्य तो सबसे जास्ती होता है और कौड़ी का मूल्य सबसे कम होता है। अभी तुम कौड़ी से हीरा बनते हो, ये बातें कभी किसके स्वप्न में भी नहीं आई कि हम कैसे कौड़ी से हीरा बनते हैं, कोई सोच भी नहीं सकता है। सिर्फ समझेंगे बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था जो होकर गए हैं, बाकी ये राज्य कब किसने दिया कुछ नहीं जानते। राजाई किसने दी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, अभी तो कोई राजाई नहीं है भारत में, और एकदम से सत्युग में राजाई आ गई। कैसे आ गई राजाई, किसने दी, कौन, कैसे हुआ, कुछ भी नहीं जानते। राजयोग से स्वर्ग की राजाई मिलती है, ये वंडर है ना। अच्छी तरह बच्चों की बुद्धि में नशा रहना चाहिए, परंतु बाबा को भी आश्चर्य लगता है, नशा तो बाबा चढ़ाते हैं परंतु माया फिर वो स्थाई नशा रहने नहीं देती। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, ये नॉलेज पढ़कर हम विश्व का मालिक बनेंगे, ये कभी किसकी बुद्धि में आता होगा क्या। तो बाप समझाते हैं बच्चों को कितनी मेहनत करनी चाहिए, गुरु का निंदक ठौर न पाए। शिव बाबा सतगुरु की अगर निंदा कराई तो ठौर नहीं पाएंगे, ये यहाँ की बात है। उनकी तो एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है, वो गुरु की बात नहीं है, ये शिव बाबा सतगुरु की बात है कि उनकी निंदा कराई तो ठौर न पाए। तुम्हारी तो एम ऑब्जेक्ट है, बाप टीचर गुरु तीनों ही हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम विश्व का मालिक बनते हैं, कितनी खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। ऐसी कोई बात न हो जो निंदा करा दो, बाबा की निंदा करा दो, ऐसी कोई बात न हो, न किसी से लड़ना झगड़ना है, सबसे मीठा बोलना है, बाप का परिचय देना है। हम तो कई दादियों को देखते थे, कोई दादी के साथ, हमारी ईशु दादी तो विशेष, ईशु दादी के सामने आते थे कई, क्योंकि हिसाब किताब की बात होती थी तो दादी को, नहीं दादी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, एकदम जोर जोर से बोलते थे, तो दादी कहती मिठरा मिठरा, हाँ मिठरा, तो मिठरा कहती थी। कोई ऐसी दादी थी जो कहती थी लाल लाल, वो कितना भी गुस्सा करे, कितना भी जोर से बोले, परंतु दादियां कैसे बोलती थी। तो बहुत हमारी ऑलराउंडर दादी तो इसमें स्पेशल थी, गुलजार दादी की लौकिक माँ, हमेशा लाल लाल ही कहती थी, नाम से तो पुकारती नहीं थी लाल। तो बाबा कहते हैं सबसे मीठा बोलना है, बाप का परिचय देना है। बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, नंबर वन दान है, कौन सा है नंबर वन दान, दे अभिमान का दान। इस समय तो तुम आत्म अभिमानी हो और परमात्म अभिमानी भी बनते हो, तो आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी बनते हो, ये अमूल्य जीवन है। बाप कहते हैं कल्प कल्प हम तुमको ऐसे पढ़ाने आता हूँ, फिर तुम भूल जाते हो, ये भी ड्रामा में नूंद है। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे ज्ञान रत्न धारण करने वाले और सर्विस करने वाले बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला सबसे मीठा बोलना है, ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे बाप की निंदा हो। सबसे मीठा बोलना है, ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे बाप की निंदा हो। दे अभिमान का दान कर, आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी बनना है। दूसरा जो ज्ञान धन मिलता है उसका दान करना है। पढ़ाई से राजाई मिलती है, इस नशे में स्थाई रहना है। अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। वरदान साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। साक्षी स्थिति होगी तो परेशान नहीं होंगे। साक्षीपन की सीट पर परेशानी साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। इस ड्रामा में जो कुछ भी होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। अभी जो लड़ाई छिड़ी है उसमें भी कल्याण भरा हुआ है। क्यों क्यों कल्याण भरा हुआ है, क्यों इसमें पता है ना कि इससे तो ये ट्रेलर है। बाबा कहते हैं ट्रेलर है, अभी तो बड़ी लड़ाई तो अभी नहीं छिड़ेगी, ये तो फिर भी बाबा कहते बंद हो जाएगी। अब बड़ी लड़ाई तो तब छिड़े जब एटम बॉम्ब छोड़े, हाँ तो वो तो बस फिर तो सोचो बस आई की आई थर्ड वर्ल्ड वॉर। तो अभी तो बाबा कहते ये सब ट्रेलर है बेहद का वैराग्य दिलाने के लिए। तो बाबा कहते हैं उसमें कल्याण भरा हुआ है। क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है। बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो नहीं सकता। बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो नहीं सकता। ऐसे शान की सीट पर रहो तो कभी परेशान नहीं हो सकते। साक्षीपन की सीट परेशानी शब्द को खत्म कर देती है। इसलिए त्रिकालदर्शी बन प्रतिज्ञा करो कि न परेशान होंगे न परेशान करेंगे, होंगे भी नहीं और करेंगे भी नहीं परेशान। स्लोगन, अपनी सर्व कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। अपनी सर्व कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो के अंतर्गत, निश्चय बुद्धि का अर्थ है बेफिक्र बादशाह, वही बाप समान है। विनाशी धन वाले जितना कमाते उतना समय प्रमाण फिक्र में रहते हैं, लेकिन जिन्हें फेथ है, निश्चय है कि हम ईश्वरीय खजानों के मालिक और परमात्म बालक हैं, वो सदा ही स्वप्न में भी बेफिक्र बादशाह है, क्योंकि उनको विश्वास है। क्यों बेफिक्र बादशाह है? क्योंकि उनको विश्वास है कि ये ईश्वरीय खजाने इस जन्म में तो क्या, लेकिन अनेक जन्म साथ हैं, साथ रहेंगे, इसलिए वो निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहते हैं। सभी निश्चिंत है ना? सभी निश्चिंत है? जो समझते हम निश्चिंत है हाथ उठाओ, सब निश्चिंत है। डबल विदेशी भी निश्चिंत है ना, क्या होगा क्या होगा कैसे होगा कुछ भी नहीं। बाबा नहीं कही कहते हम तो बाबा के घर में सुरक्षित है, फ्लाइट नहीं चले तो नहीं चले, हम तो बाबा के घर में सुरक्षित है। चलो वो भी बहुत सुंदर। अभी कल से तो आप सुन ही रहे हैं बाबा का ये बेहद का घर, कोई न कोई रोज शरीर छोड़ते हैं, इतना बेहद का घर है, बेहद का परिवार है, तो रोज तो सुनते रहते हैं। और कल तो हमारी अनन्य रत्न ने शरीर छोड़ा, सुरेंद्र बहन जो बनारस में रहती थी उन्होंने शरीर छोड़ा। विदेशी तो बनारस बहुत जाते थे, जो डबल विदेशी बनारस गए हैं वो हाथ उठाओ। वाराणसी, वाराणसी कौन गए हैं? थोड़े से गए हैं। यहाँ तो सुरेंद्र बहन सबकी बहुत पालना करती थी, बहुत ही पुरानी रत्न। कुछ समय से आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आपने कल शरीर छोड़ा, तो बहुत ही उनका बहुत उनका विस्तार से परिचय दिया गया है। बाबा मम्मा की इन्होंने पालना ली। हम सभी अति स्नेही साकार मम्मा बाबा एवं सभी वरिष्ठ दादियों की पालना में पली हुई बनारस एवं पश्चिम नेपाल जोन की प्रमुख आदरणीय ब्रह्मा कुमारी सुरेंद्र दीदी ने कल 6 तारीख को प्रातः 9:10 अपने पुराने देह का त्याग कर प्यारे बाप दादा की गोद ली। अब काफी समय से स्वास्थ्य ठीक नहीं था। कुछ समय पहले आपको दिल्ली में सर गंगाराम हॉस्पिटल में लाया गया, वहाँ ही आपका इलाज चल रहा था। यज्ञ में पहले पहले आपने ही महामंडलेश्वर और महात्माओं की सेवाएं शुरू की, और आपने ही पहली बार मधुबन में बड़े बड़े महात्माओं और महामंडलेश्वरों को ले आई थी। वहाँ से ही धर्म नेताओं की सेवाएं प्रारंभ हुई। आप त्याग तपस्या और वैराग्य की चैतन्य मूर्ति थी। आप बाप दादा और दादियों की बहुत ही आज्ञाकारी रही, जो बाप दादा और दादियों ने कहा वो आपने करके दिखाया। तो ऐसी महान विजयी रत्न आत्मा को हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। दीदी जी का अंतिम संस्कार कल होगा, सवेरे 10 बजे किया जाएगा। तो वहाँ से उनके उनकी बॉडी को बनारस ले गए हैं, और बनारस में आज सारा दिन उनके अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। सारनाथ में अपना बहुत सुंदर म्यूजियम है, बाबा का बहुत सुंदर घर है, वहाँ पर ही होगा और कल उनका अंतिम संस्कार होगा। और दूसरा, बैंगलोर की नरसम्मा माता, नरसमा बहन थी, बहुत ही बाबा की पुरानी बहन, जो साकार बाप दादा और वरिष्ठ दादियों की पालना में पली। आप 1967 में ज्ञान में आई और 1972 से आप समर्पित रूप से अपना जीवन सेवा में अर्पित किया। अपने बैंगलोर और आसपास के कई जिलों में सेवाएं की और कई सेवा केंद्र स्थापित किए। आप त्याग तपस्या की मूर्ति, अब आपने भी गुरुवार 5 तारीख को अपना देह त्याग कर बाबा की गोद ली। ऐसे श्रेष्ठ महान आत्मा को भी हम श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। हम सभी जानते हैं कि विश्व में कहीं न कहीं युद्ध चल ही रहा है, तो युद्ध में जो भी आत्माएं शरीर छोड़ रहे हैं, ऐसी आत्माओं को भी हम सब अभी योगदान देंगे। बहुतों ने शरीर छोड़ा है इस ईरान और इसराइल के वॉर में, कई मर रहे हैं, बहुत मिसाइल्स चल रही है और युद्ध तो बढ़ता ही जा रहा है, रोज बहुत बहुत खबर आती रहती है। तो हम सब आत्माओं को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, बाबा की याद में उनको योगदान देंगे। ओम शांति। और उसके बाद सभी डबल विदेशी भाई बहने बैठे रहें, आपको आज का प्रोग्राम देंगे। ओम शांति।